ओम शांति। स्वर्ग के देवदूत ये खबर सुनते हैं कि धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत सबका कल्याण करता है और बहुत सबकी मदद करता है और लोग उसे संत कहते हैं, पर है वो एकदम साधारण सा और उसकी बहुत महिमा है। और भगवान उन देवदूतों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ उसको कोई कुछ चमत्कारिक शक्तियां देकर आओ। तो वो देवदूत धरती पर आते हैं, उस संत से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि भगवान ने आपको याद किया है और भगवान ने हमें आपके पास इसलिए भेजा है कि हम आपको कुछ चमत्कारिक शक्तियां दे दे। वो कहता है मुझे किसी चमत्कारिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो कहते नहीं, आपको लेनी पड़ेगी, हम आपको कुछ वरदान कुछ शक्तियां देने आए हैं, तो बताओ आपको कौन सी शक्तियों की आवश्यकता है, जो आप कहोगे जो आपकी इच्छा वो पूर्ण होगी। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा कृपा से मेरे पास सब कुछ है और भगवान ने मुझे याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नो थैंक्स। वो कहता है नहीं, हम तो आपको देके रहेंगे, हम खाली हाथ कैसे जाएंगे। तो कहता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, तो हम आपको ऐसी शक्ति देते हैं, आप अगर किसी मरीज को हाथ लगा दो तो वो ठीक हो जाएगा, कोई रोगी है कोई रुग्ण है उसको स्पर्श कर दो तो उसकी बीमारी छुमंतर हो जाएगी। तो वो कहता है ये काम तो भगवान का है, मुझे ये शक्तियां नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं फिर तुमको हम ऐसी शक्तियां देते हैं कि जो संसार में दिशा भ्रमित हो गया है, भटक रहे हैं, उनको तुम जैसे ही वो तुमको देखेंगे उनको राह मिल जाएगी, वो अध्यात्म के मार्ग में आ जाएंगे। तो वो कहता है ये काम तो आप फरिश्तों का है, मेरा नहीं, मुझे ये शक्तियां नहीं चाहिए। फिर वो लोग कहते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि तुम्हें ऐसा एक आदर्श व्यक्ति बना देते हैं कि सारा संसार तुमको देखे और तुम्हारी महिमा गाए कि मनुष्यों में ये आदर्श है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए और सारे लोग तुम्हारी महिमा करें। वो कहते हैं इससे लोग भगवान से विमुख हो जाएंगे और मेरी ओर आकर्षित हो जाएंगे, मुझ में फंस जाएंगे, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं आखिर तुमको हम दे क्या, तुमको लेना तो होगा। वो कहता है ऐसा कुछ दो कि मैं दूसरों का कल्याण करूं पर मुझे पता ना चले और जिनका कल्याण करूं उनको भी पता ना चले। तो सारे फरिश्ते देवदूत जाते मीटिंग करते क्या किया जाए, कि ऐसा क्या कर दिया जाए। तो वो कहते ठीक है, आज के बाद तुम जहां जाओगे तुम्हारी जो परछाई है जिस पर भी पड़ेगी उसका कल्याण होगा और तुमको भी नहीं पता चलेगा उसको भी नहीं पता चलेगा। तो कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो उसके बाद वो जहां से गुजरता है वहां पर रोगी और व्यक्ति होते हैं, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, पर उस बीमार व्यक्ति को नहीं पता इसकी वजह से हुई और इसको भी नहीं पता मेरी वजह से हुई। जो दुखी है उसका दुख दूर हो जाता है, जो पतझड़ है जहां पर वीरान बंजर भूमि है वहां से वो गुजरता है, वहां हरियाली आ जाती है, गुलजार हो जाता है। जहां जहां से वो गुजरता है लोगों का कल्याण करते जाता है, पर उसे पता नहीं चलता है मेरी वजह से हो रहा है, वो तो अपना साधारण रीति से चलता फिरता झूमता नाचता गाता खुश रहता भगवान के गुण गाता, पर जहां जहां से वो जाता है, जहां नदियां सूख गई है नदियां उफान आ जाता है, जहां जहां पर लोग अकाल पड़ा हुआ है वहां पर सब कुछ भरपूर हो जाता है। तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता ये क्यों हो रहा है, पर धीरे धीरे उनको पता चलता है कोई परछाई है जिसकी वजह से ये हो रहा है, पर वो इनविजिबल है, अदृश्य है, अज्ञात है। तो लोग उसे कहने लगते हैं होली शैडो। तो महिमा केवल उस होली शैडो की है, पर वो कौन व्यक्ति था वो आज भी नहीं पता, और विदेश में काफी प्रसिद्ध है ऐसी एक होली शैडो है जो आती है और ठीक करके चली जाती है सब कुछ। तो यहां एक बहुत ऊंची चीज इसमें बताई है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अहंकार आने का बहुत बड़ा एक द्वार सेवा हो सकता है, क्योंकि सेवा एक की और उसमें अहंकार आया, सेवाएं की और सोचना मैंने किया, वो इतना जल्दी आ जाता है कि हम उस सेवा का क्रेडिट किसी थर्ड पर्सन को देने को मन नहीं करता है। हाँ, भगवान को शायद दे दे क्योंकि वो दिखता नहीं, अदृश्य है, पर दूसरों को देने के मन नहीं करता। उनको दे देंगे वो जो मर चुके हैं, डेड है, ये सुरक्षित होता है, पर जो जीवंत है उसको देने में थोड़ा सा कठिनाई है। जो चले गए हैं, जो ऊपर में बहुत बड़े हैं हमसे, बहुत मतलब बहुत बड़ा टाइम गैप है, दादी वगैरह, तो इधर कोई खतरा नहीं है। पर जो साथी है या थोड़े बड़े है या छोटे हैं, उनको तो बहुत ज्यादा खतरा है छोटों को क्रेडिट देने के। जैसे बताया, एक व्यक्ति है जो देखता है एक जमीन एकदम बंजर पड़ी हुई है, वो किसान है, सोचता है क्यों ना इस बंजर जमीन पे फसल आ जाए, ऐसी मेहनत करूं, इस भूमि पर काम करूं ताकि फसल वो आ जाए और हरियाली आ जाए। तो वो उस भूमि पर जाता है, हल चलाने लगता है, काम करने लगता है। पहला ही दिन गांव के चर्च का पादरी वहां आता है और कहता है, उसे वरदान देता है, उसे ब्लेसिंग देता है कि भगवान और तुम दोनों मिलकर ऐसा हो जाए कि ये जो जमीन है, बंजर जमीन, इसमें हरियाली आ जाए, बहुत सारी इसमें अच्छी फसल आ जाए, तुम दोनों मिलकर काम करो, भगवान और तुम। तो वो चला जाता है। कई मास गुजरते हैं और वो किसान बहुत अथक प्रयास करता है और बहुत मेहनत करता है और इतना अच्छा वो बंजर भूमि उपजाऊ उर्वर भूमि बन जाती है, फर्टाइल लैंड बन जाती है और बहुत उसमें फसल उगाता है और बहुत फसलें आ जाती है। तो वो पादरी फिर आता है और वो कहता है, वाह बहुत ही अच्छा, मुझे पता ही था कि भगवान और तुम दोनों मिलकर जब काम करेंगे ना तो यही हाल होने वाला है। तो वो किसान कहता है, पर आपको पता है जब भगवान अकेला काम कर रहा था तो क्या हाल था? ये तो हम दोनों ने मिलकर काम किया, पर वो जब अकेला काम कर रहा था तो क्या हालत थी इसकी? तो मनुष्य का मौलिक स्वभाव ऐसा है कि जब वो काम करता है और सफलता मिलती है, वो सफलता बांटना नहीं चाहता किसी के साथ, पकड़ लेना चाहता है, ये मैंने तो किया, इतनी मेरी मेहनत रंग लाई तब कुछ ये सफलता मिली, और हम कह देंगे अरे नहीं, ये इनकी वजह से हुआ। हाँ, मुख से कह देगा आपकी कृपा, आपकी दया, आपका आशीर्वाद, आपकी मदद, पर अंदर तो कहता है मैं, जोर जोर से मैं धक्के देते रहता है अंदर से, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो होता क्या? तो सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति कुछ करने जाता है तुरंत कुछ आ जाता है, कुछ मैलापन। तो इस मुरली में बाबा ने सेवा के 7 सूत्र बताए हैं सेवाधारियों से मुलाकात में। सबसे पहला, सेवा क्या है? मेवा। पहली बात है, सेवा क्या है? मेवा। कौन सा मेवा? ताजा मेवा, सूखा मेवा नहीं। और ताजा मेवा खाने से क्या होता है? तंदुरुस्त। तंदुरुस्त अर्थात हेल्दी। हेल्थ का और सेवा का क्या संबंध है, ये एक प्रश्न है। बाबा कह रहे सेवा करो तो तंदुरुस्ती रहेगी। तंदुरुस्ती भी कौन सी? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तीनों ही ले लो, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल या सोशल, चारों। कैसे? शारीरिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है सेवा से? कोई अगर कहे मैं खाली योग करता हूं और ज्ञान का चिंतन मनन करता हूं बस, सेवा करने की क्या आवश्यकता है? टाइम वेस्ट। हम बड़ी सेवा करेंगे मनसा वाली, वाइब्रेशंस फैलाने की, श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहने की। ये स्थूल सेवा की हम बात कर रहे हैं। स्थूल सेवा मेवा कैसे है और या तंदुरुस्ती कैसे? एक्सरसाइज होती है, बॉडी थोड़ी हिलती है, भाग दौड़ करना पड़ता है। वो सूक्ष्म बातें, स्थूल बातें पहले। जब हम एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, जो हमारा मूड ठीक रखते हैं। और जो खाली बैठा बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, खाली एक ही जगह पर है, सुस्त महादेव, ठंडे ठाकुर, वहां पर धीरे धीरे सुस्ती आएगी, आलस आएगा, अलबेलापन, सब कुछ अपने आप आने लगेगा। जो जो जिस जिसने आज तक ऐसा किया है कि मुझे थोड़ा सेवा से मुक्त करो और मैं ज्ञान युक्त और योग युक्त होना चाहता हूं, बस मुझे सेवा से मुक्त कर दो, वो धीरे धीरे माया युक्त हो गया और ज्ञान मुक्त और योग मुक्त हो गया, सेवा मुक्त होते ही, और बीमारी युक्त हो गया, आलस से युक्त हो गया, सारी चीजें उसमें आने लगी। जब भी ऊपर से लगता है। और दूसरी बात, योग का आकर्षण भी इसलिए है कि व्यक्ति कर्मयोगी है, वो सेवा में बिजी है, वर्क में बिजी है, ये वर्क है 6 घंटा, इस सेवा के बाद में फिर आकर्षण रहता है, जैसे संडे का आकर्षण होता है काम करने वालों को, संडे आएगा तो हम अपने लिए कुछ करेंगे, अगर हर दिन संडे हो तो फिर वो संडे का आकर्षण खत्म होगा, धूप ही धूप, छाव ही छाव में बैठा रहा कोई तो फिर धूप छाव का आकर्षण कम हो जाएगा। हाँ, जब धूप में भटक रहा है, पसीने आ रहे हैं, तब उसको छाव चाहिए। उसी तरह अमृत वेला योग का आकर्षण भी इसलिए है, मुरली का आकर्षण भी इसलिए, ज्ञान का आकर्षण भी इसलिए कि सारे दिन भर हम कुछ और कर रहे हैं, काम, डीड, वर्क, वो होने के बाद ये सब चीजें ज्यादा खींचती है। अगर इसी को निकाल दिया जाए, छाव में बैठे रहो बस, तो शायद वो जो आकर्षण है अमृत वेले का, वो जो योग का आकर्षण है, वो जो नुमा श्याम के योग का आकर्षण है, वो स्वतः ही कम हो जाएगा। तो सेवा मेवा है, क्यों? क्योंकि वो बिजी रखता है, और बिजी रहने से शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा, शारीरिक रीति से भी हेल्दी रहेगा। बैठे बैठे नहीं तो सुस्ती आएगी, बीमारी आएगी, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, हेल्थ और स्पिरिचुअल रीति से भी। स्पिरिचुअल में तो सारे उत्तर आपको पता है, दुआएं, खुशी, संतुष्टता। सेवा करने से क्या मिलता है? नशा, विशेषताएं, अपनी स्किल्स जो है वो निखर आता है, उसमें निखार आता है, हमारी स्किल्स डेवलप होती है, शार्पन होता है इंटेलेक्ट, क्योंकि सेवा में बुद्धि चलानी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, मीटिंग करनी पड़ती है, संस्कार मिलन होते हैं, उसका मैनेजमेंट समझ में आता है, ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे लाना है वो समझ में आता है सेवाओं से। स्थूल सेवा की हम बात कर रहे हैं अभी, स्थूल ग्रॉस, एकदम कुछ काम करने की, इस तरह की सेवाओं में। तो सेवाएं, कर्म हमें एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है, स्पिरिचुअल डायनामिज्म, वो माइंड एकदम उस एनिमेटेड स्टेज में रहता है जिसमें हम सोच सकते हैं, नई प्लानिंग्स आती है। तो ये सारी चीजें कहां होती है? सेवा में। इसलिए बाबा ने कहा सेवा क्या है? मेवा है, ताजा मेवा है जो तुम्हें स्वस्थ रखता है। ये पहली पॉइंट है, सेवा का पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है भाग्य, फॉर्च्यून। दूसरा सूत्र है भाग्य। यहां बाबा ने स्थान का उदाहरण दिया, संसार के लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं और अपने आप को क्या समझते हैं, वहां सेवा कर कर महान आत्मा समझते हैं, पुण्य आत्मा समझते हैं, महान आत्मा समझते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर सेवा करने के बाद। हरिद्वार जाओ, वहां पर सेवा करो गरीबों की, पुण्य करो, दान पुण्य करो, बहुत खुशी होती है आत्माओं को, अपने आप को महान समझते, तुम महातीर्थ पर हो, और यस इस महातीर्थ पर सेवा करना अर्थात अपने आप को क्या बनाना, महान, भाग्यशाली बनाना। तो यहां एक प्रश्न है, मधुबन में सेवा करना और मधुबन के बाहर सेवा करना में क्या अंतर है? चलो सेंटर ले लो और मधुबन ले लो, एक है महातीर्थ, एक है तीर्थ। तो सेंटर में सेवा करना और मधुबन में सेवा करने में क्या अंतर है? ये बेहद का है, वो एक एरिया की सेवा है, और यहां ये विश्व की सेवा, वो बेहद में आ गया, वह ढूंढना पड़ता है। और एक, चलो इससे भी और कर्टेल, एक माता है जो सेंटर पर जाकर टोली बनाती है, और एक माता है, वही माता फिर मधुबन में आके टोली बनाती है, एक माता है जो वहां जाके रोटी बनाती है, एक है जो मधुबन में रोटी बनाती है। अब दो रोटियों में क्या अंतर है? वहां पर भी तो ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा भोजन तो दोनों तरफ है, यहां पर भी ब्राह्मण वहां पर भी ब्राह्मण। वो दूसरा, यहां पर मधुबन निवासी भी खा रहे हैं, मधुबन निवासियों की सेवा हो रही है जो संसार छोड़कर यहां बैठे हैं, सर्वस्व त्याग करके, मतलब आप। ये एक महानता है। वहां पर ब्राह्मण आत्माएं हैं जो संसार में रहती है, एक तो ये अंतर है, वहां की सेवा यहां की सेवा दोनों ही महान है, कंपैरिजन नहीं हो सकता है दोनों में, फिर भी थियोरी के हिसाब से। और सेवा केंद्र पर यहां पर वैरायटी आत्माएं हैं, सेवाधारी भी है, मधुबन निवासी भी है, पार्टी वाले भी है, और गेस्ट भी है, शिविर वाले है, कॉन्फ्रेंस वाले है, सब है, विदेशी भी है, श्रमिक है, बाकी सब लोग है। वहां पर उतने हैं उस एरिया के खाली, यहां पर वैरायटी आत्माएं हैं जिनके लिए बन रहा है। ये महातीर्थ की सेवा का ज्यादा महत्व है। लोग तो जैसे तीर्थ यात्रा घर में भी दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्राओं में भी दान पुण्य करते हैं, पर वहां का महत्व ज्यादा है। फिर यहां पर स्थान की मदद है, यहां पे मनस्थिति जो है उनकी वो थोड़ी ऊंची है जहां पर काम किया जा रहा है, यहां पे खुशी ज्यादा है, और यहां पर केवल सेवा के लिए आए हैं वो, चारों धाम है, और यहां उस भाव से आए हैं हम बाबा के घर में, इसके लिए उनकी भावनाएं स्वतः ही ऊंची है, तो भाव उनके यहां थोड़े परिवर्तित है, यहां पॉजिटिविटी ज्यादा है, वहां थोड़ी सी इतनी नहीं होगी। यहां टाइम टेबल में सब होता है, वहां वहां पे भी होता है, थोड़ा कम टाइम टेबल में, यहां स्ट्रेस नहीं रहता है, वहां स्ट्रेस रहता है। यहां लौकिक जिम्मेवारी छोड़ के आते हैं तो यहां थोड़ा निश्चिंत होते हैं, वहां पर चिंता होती है अभी घर जाना है, सेंटर पर गए सुबह रोटी बनाई और जो भी किया पटोली बनाई भोजन बनाया, फिर होता है घर पे भी अपने घर का भी तो बनाना है, छोड़ के तो आ नहीं सकते खाली सेंटर पर, तो उधर का भी इधर का भी, यहां पे वो कुछ भी नहीं है, यहां पे खाली ये करो क्लास करो मुरली सुनो और रेस्ट करो और योग करो, तो यहां थोड़ी ज्यादा निश्चिंत है। यहां क्लास, यहां पे वो भोजन बनाते हुए भी गीत क्लास सब जारी रहता है, और यहां पे बड़ा संगठन है ब्राह्मणों का जिसके बीच में बैठकर ये सेवा करते हैं, रोटी बना रहे तो इतनी सारी रोटियां बन रही है, यहां एक्स्ट्रा सेवा वो भी हो गया तो वो दूसरी भी सेवा कर सकता है कोई, तो भाग्य बन रहा है यहां पर। बाबा सेवाधारी जो मधुबन में आए हैं उनसे बात कर रहे हैं कि तुम लोग यहां आए हो महातीर्थ पर आए हो तो तुम महान भाग्यशाली हो, ये डबल सेवा, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, माया आ नहीं सकती जब कोई सेवा में बिजी रहता है, क्यों वो है अगला पॉइंट है, वो माया क्यों नहीं आ सकती, माया अर्थात विकार। यहां कहो आप सेवा में आ जाओ, इन जनरल सेवा, पीछे आ जाइए, पीछे पीछे बैठ जाओ, तो तीसरा है माया सेवा में क्यों नहीं आती। एक बात, जब भी व्यक्ति खाली रहता है पहले माया के आने की जो फिलॉसफी है उसको समझना है। माया कब आती है, विकार कब आते हैं, जब खालीपन होता है, अकेलापन महसूस होता है, मैं अकेला हूं, कोई तो चाहिए, मेरे साथी चाहिए, और जब अकेलापन नहीं, अकेलापन बहुत ज्यादा होता है जीवन में, तो नेक्स्ट स्टेप है विकार, लोनलीनेस से माया चालू होती है। माया आने का मुख्य साधन है जीवन में अकेलापन, 24 घंटे कोई बिजी है और 24 घंटों में से कोई एक घंटा खाली रहता है, एक घंटा उसने एकदम खाली रख दिया जिसमें ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस खालीपन की अवस्था में ही माया आएगी, नहीं तो माया नहीं आती। वाइसेस कहां एंट्री करते हैं, खालीपन में, तो माया तो सेवा बिजी रख देती है, सेवा हमको एंगेज कर देती है कोई ना कोई चीज में, जैसे कोई किचन में सेवा कर रहा है 4 घंटा 6 घंटा, उस समय काम विकार नहीं आएगा, उस समय लोभ अहंकार ये कम चांसेस है, पर वो जब खाली स्टेज में चला जाएगा, और खालीपन जीवन में सबसे ज्यादा तब आता है जब कोई बहुत बड़ी सेवा करके सेवा कर ली, उसके बाद में फ्री हो जाता है ना आराम करने के लिए, तब माया आती है। जैसे 24 घंटे में 8 घंटा ड्यूटी की और योग करने के अभी टाइम बाकी है, तो बीच के 2 घंटे खाली है, उसी टाइम पे वो सोचता है मैं थोड़ा आराम करूं, क्योंकि कहा गया ये साथ में रहता है, इससे माया प्रवेश करती है, ये द्वार है ऐसा, खालीपन इधर, इससे माया घुस के इधर आती है फिर। हाँ वो टाइम पे इसके लिए सबसे ज्यादा बिजी तब रहना है जब बहुत बड़ी सेवा हुई और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई, मेगा प्रोग्राम किया, कोई कॉन्फ्रेंस की, बहुत बिजी रहे, उसके बाद में खाली टाइम है, उस खाली टाइम में ही माया प्रवेश करती है, क्योंकि उस टाइम हम सोचते हैं हम योग अभी थोड़ा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा टाइम है। हमारे हम जब कॉलेज में थे तो जब भी एग्जाम पूरी होती थी, फाइनल एग्जाम या कोई भी एग्जाम, तो और दूसरे जैसे आज पेपर है, मेडिसिन का आज पेपर हुआ, सर्जरी पेपर को 2 दिन के बाद है, या ऑर्थो पेपर का 2 दिन के बाद है, तो लोग स्टूडेंट क्या करते थे, हम साथी सारे, अभी पेपर देके आते ही पहला काम है मूवी देखने जाना, थोड़ा रिलैक्स, 4 दिन से दिन रात पढ़ रहे, लगे हुए है पूरा, नींद नहीं कुछ नहीं, अब थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, मूवी देखने जाना है, ये रिलैक्सेशन है, ये काम करते थे। तो ये मनुष्य के मन का काम देखो कैसे करता है, वो सेवा की बहुत सफलता मिली, अब क्या करना है, रिलैक्स, पार्टी, अब पार्टी करेंगे थोड़ी, सबने बहुत काम किया तो अब क्या करना है, पार्टी करना है, पिकनिक, थोड़ा खुशी हो जाए, सबको लगे भाई हम भी कुछ क्या काम ही करते रहे क्या, केवल थोड़ा रिलैक्स भी तो होना चाहिए, रिलैक्स होना बहुत अच्छा है, पर वो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट होना चाहिए, नहीं तो एंटरटेनमेंट में ही माया प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमारा एक नियम था पूरा स्टडी पीरियड में कि जिस दिन एग्जाम पूरी हुई और सब लोग खेलकूद में चले गए और एक मूवी देखने चले गए, इमीडिएटली दूसरा जो पेपर है उसका आए बराबर ही पढ़ाई चालू कर देना, हाँ फिर दूसरे दिन आराम करना। पर वो जो पीरियड है 3 घंटा एग्जाम में बैठे तो माइंड एकाग्र है, और उसके बाद तुरंत खेलकूद में लग जाना, वो डिस्टर्ब करना है, कॉन्सेंट्रेशन को भंग करना है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड माइंड जो हुआ है उसको भंग नहीं कर देना है। चाणक्य के इसमें दिखाया है, वो चंद्रगुप्त को भेजता है वीर यात्रा के लिए, एक कुछ तो लाना होता है, उसमें कितने दिन लग जाते हैं और कितनी मुसीबतें आती है, और वो चाणक्य उस चंद्रगुप्त छोटा होता है उसको तैयार करता है कि ये सबसे बड़ी यात्रा है तुम्हारे जीवन की, ये अगर तुम सफल हो गए ना, तुमको वो मिल गया तो तुम जीवन भर सफल हो जाओगे, इतना पूरा माइंड उसका तैयार करता है, और वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर जान पर खेल कर वो यात्रा पूरी करके आता है, और आने के बाद में फिर पार्टी होती है, जश्न, सब लोग खेल रहे हैं, वहां से चाणक्य आते कहते व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें समय को सफल करना है, अब ये तो कुछ नहीं था, अभी आगे का सोचो क्या करना है, इतना बड़ा तुम्हें मगध का सम्राट बनना है, तुम ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट। तो सफलता मिली, सेवा का परिणाम खालीपन और लोनलीनेस, अंदर वैक्यूम, और फिर माया की प्रवेशता। तो सेवा निरंतर होती रहे, इसलिए एक काम दे रहे हैं आप सबको, ऐसे 10 काम निकाल के रखो जो खाली टाइम पे करने हैं, जैसे अलमारी का सारा सामान नीचे और उसको वापस भरना चालू करो, ये काम करना है जब खाली रहे तो। क्या उधेड़ना और बुनना, फिर चप्पल ठीक से करना चालू करो, जो वो ऐसे पेंडिंग काम की लिस्ट निकालो जो हमने हमेशा ही अवॉइड की है, और सोचना जब भी खाली टाइम मिलेगा ये काम करने हैं, इस टाइप के काम जो है ना, पूरा बाथरूम वगैरह ठीक करने का, सब इधर उधर पड़ा हुआ है, वो सारा निकाल के, अलमारी निकाल के, या कमरा साफ करना, ये जो काम है ना, ये खाली टाइम को भरने के काम है। तो पहले से हमारे पास एक लंबी लिस्ट हो 10 चीजों की, जो कि हम खाली टाइम पे करें, क्योंकि खाली टाइम आते ही क्या होता है, माया की प्रवेशता। तो तीसरा सूत्र है सेवा का, माया नहीं आती। चौथा सूत्र है डबल बिजी, तन से भी और मन से भी, बिजी रहो, तो डबल सेवा होगी, सिंगल सेवा नहीं। मन से किसमें और तन से किसमें? तन से स्थूल सेवा में और मन से वायुमंडल वातावरण को शक्तिशाली बनाने में। जैसे ही सेवा पूर्ण हो जाती है, जैसे किसी को 6 घंटे सेवा है, डिपार्टमेंट से बाहर आ गया, तो यह सोचना है अभी मेरे पास वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करनी है। एक दूसरा, इतने सारे गेस्ट यहां आते हैं, उनको समझाओ, जब उदास लगे तो फिर दूसरों को यह समझाओ खुश कैसे रहना है, उदासी से दूर कैसे हो। ऐसे बोलना, मेरा भी ऐसा एक बार हुआ था, अभी हो रहा है अभी उदासी में हूं। हाँ, तो उनको बोला आप उदास हो तो मैं बताता हूं कैसे उदासी से दूर हो जाए, मैं अभी उदास हूं, ठीक है? तो उनको ये समझाना, मैं भी एक बार ऐसा ही उदास हुआ था, तो मैंने ना ये सब किया था, और उनको बताते बताते चुपके से हमारी अपनी उदासी खो जाएगी। तो कोर्स कराना, प्रदर्शनी समझाना, म्यूजियम पर जाना, यहां लोगों को थोड़ा उनको पूछना कि भाई तुमने माउंट आबू देखा है क्या, हम घुमाएंगे, हमारे पास टाइम है, आज मैं फ्री हूं, किसी के माँ बाप आए हैं, लौकिक भाई आया है, भाभी आई है, उनको घुमाना चालू कर देना, तो हमारी अपनी उदासी गुम हो जाएगी। तो डबल बिजी, बिजी कर देना है। स्थूल सेवा पूरी हुई तो ये नहीं कि अभी स्थूल सेवा पूरी हुई, अभी बिस्तर पर गए और फिर ये आ गया और फिर इसमें कुछ कुछ देखना चालू कर दिया और करना चालू कर दिया और माया के वश हो गए, वो 1 घंटा ऐसे ही चला गया, वो 1 घंटे को भी सफल करना है। तो चौथा सूत्र है डबल बिजी। क्या नहीं देखना? देखो, उसमें से मुरली है, उसमें पढ़ो, क्लास सुनो, कौन सा क्लासेस, एक लिस्ट हमारे पास हो कि ये क्लासेस पेंडिंग है, अभी तक सुने नहीं है, ये एक दूसरा काम है, जो बहुत पुराने पुराने क्लासेस है और हो सकता है हमने ही किए हुए हो और हम ही भूल गए, वो तो और ही अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा है, जो हमने ही बोला हुआ है वो अगर है हमारे पास तो वही सुनना और देखना, अरे वाह अच्छा है ये तो, और मुझे तो याद ही नहीं, ये तो जरा ठीक ठाक लग रहा है, और ये तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, पर इसका लोगों को तो बहुत सिखा दिया, और मेरा क्या, अभी चुपके से मुझे भी करना है, किसी को पता ना चले। तो एक लिस्ट हो हमारे पास कि ये क्लासेस पेंडिंग है, ठीक है, और ये क्लास जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सुनना चालू करूंगा। अगर एक जगह बैठकर नहीं सुन सके तो नक्की पर चले जाओ, एक पूरा राउंड लगा के आओ, एक क्लास धीरे धीरे पूरा होगा, नहीं हुआ तो डबल चक्कर लगाओ, पर उसको कंप्लीट करना ही है, क्योंकि कुछ तो मिलेगा उससे, क्योंकि वो मन किसी और का है, वो चिंतन किसी और का है, और हमारा चिंतन से कुछ तो उसमें नया होगा, मेरी विचारधारा और उसकी विचारधारा में कुछ तो अंतर है, तो वो पेंडिंग, तो काम ये जैसे बताया उसमें भी खाली नहीं रहना है। एक लिस्ट बनाओ कौन से काम करने हैं, दूसरा एक लिस्ट बनानी है कौन से क्लासेस सुनने हैं, तीसरा एक लिस्ट बनानी है कौन सी किताबें पढ़नी बाकी है, यज्ञ की कौन सी किताबें अभी बाकी है जो हमने पढ़ी नहीं अभी तक, कितनी किताबें हैं, इधर लिटरेचर में जाके पहले मुआयना करना उसका कि कौन सी पढ़नी बाकी है, कौन सी देखनी बाकी है, शिव और शिवरात्रि पढ़ी नहीं पढ़ी, ब्रह्मचर्य पढ़ी नहीं पढ़ी, वारे में ब्राह्मण आत्मा पढ़ी नहीं पढ़ी, कर्म की कोई गति पढ़ी नहीं पढ़ी, राजयोग पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ी है और पढ़ी नहीं है, पर पढ़ी तो है पर पढ़ी नहीं है ना, पढ़ी की पढ़ी रह गई है पर हमने पढ़ी नहीं, तो लिस्ट बुक्स कौन कौन सी नहीं पढ़ी, उसके बाद में ये लिस्ट निकालो कौन से मैगजीन हमने पढ़े नहीं है अभी तक, ज्ञानामृत, फिर उसके बाद में भी बहुत टाइम बचा है अगर, तो भाषा तो है ही, नई भाषा सीखना, कौन सी भाषा नई, हिंदी तेलुगु, तेलुगु छोड़ो जिनको हिंदी नहीं आता पहले तो हिंदी चालू करें, और वो भी मुरली में आए हुए शब्द उनकी स्टडी जो नए हैं जो अभी तक हमको पता नहीं थे, और उन मुरली डिक्शनरी में से वो शब्द निकालने, अच्छा वो भी हो गया अगर भाषा के, तो टॉपिक्स तो है ही, ढेर सारे टॉपिक्स निकाल के रखो, हर मुरली से टॉपिक निकाल के रेडी रखो कि ये टॉपिक है, जैसे टॉपिक शब्द आया तिवाटा, तो उसमें हम टॉपिक निकाले ब्राह्मण जीवन के तिवाटा, शुभी रस आया पवित्रता का शुभी रस, टॉपिक्स निर्माण करने हैं और उनके ऊपर सोचना है अगर टाइम है ये सब करके भी, कमरे का काम कर लिया, भाषा भी कर लिया, हाँ, और वो होमवर्क, तो अपना होमवर्क अगर हो गया तो फिर सोचना दूसरों को क्या क्या था, फिर दूसरों का होमवर्क करना, नहीं दूसरों का होमवर्क हम करना खुद, उनको जिस मेथड से दिया है पहले दूसरों से चालू करना, लास्ट में अपना करना, ये एक अच्छी मेथड है। चार लोगों का होमवर्क पहले करना फिर अपना बाद में करना, तो ये हो गया बिजी। हाँ तो बिजी रखने के लिए अपने आप को बहुत सारी मेथड्स करनी होती है ताकि माइंड निरंतर बिजी रहे, नहीं तो माइंड की टेंडेंसी है कि नीचे आता है, ऐसे 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 मार्ग पे चला जाता है, भटक जाता है, उसके लिए उसको खींच के टाइट रखना है थोड़ा, नहीं तो नीचे घुसता है वो। अगला है, ये हो गया चौथा, चौथा या तीसरा, पहला मेवा, दूसरा भाग्य, तीसरा माया, चौथा बिजी, डबल बिजी, छठवा प्राप्तियां, डबल प्राप्तियां होती है सेवा से। हाँ, कौन कौन सी, तन मन धन, तन का लाभ, मन का लाभ, और धन अथाह मिलेगा, और भोजन लास्ट तक मिलते रहेगी, कितनी रोटी, दो मिलेगी, ज्यादा मत मांगना। बाबा ने कहा मैं दाल रोटी दूंगा, पर आप कहेंगे मुझे पनीर भी चाहिए, मुझे चटनी भी चाहिए, राजस्थान रोटी चाहिए, रोटला चाहिए, हाँ तो वो सब चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। बाबा ने गारंटी किसकी दी है, दाल और रोटी, तो दाल और रोटी खाने की आदत डाल के रखनी है। माल पानी थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि वो साइज कितना भी रहने दो, पर दाल रोटी की आदत अर्थात वो सादा भोजन की आदत चाहिए, जिसको बहुत गरिष्ठ और बहुत तेल और बहुत मसाला और बहुत तीखा और ये सब खाने की आदत है, तो एक समय आएगा, लास्ट समय आठ पेपर आने वाले, उसमें से एक पेपर जो है वो ये है, साधनों का अभाव, उससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो तन का भी लाभ, मन का भी लाभ, और धन भी बहुत मिलेगा, और रोटी रास्त तक मिलती रहेगी, ये हो गया। उसके बाद में अगला है लॉटरी, सेवा लॉटरी है। कैसे, किसी को लॉटरी मिली है आज तक, किसको लगी है लॉटरी, जैकपॉट, आज तक किसी को नहीं लगा। एक मुरली में प्रश्न पूछा था, बच्चे बाप से पूछते, बाबा क्या हम लॉटरी ले ताकि जो पैसा मिले हम सेवा में लगाए? तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था, बाबा ने क्या, हाँ वो भी लॉटरी है, तो नहीं तो ये, इसका बाबा ने क्या उत्तर दिया था, बाबा लॉटरी लेते ताकि पैसे मिलेंगे सेवा में लगाएंगे, तो आपकी सेवा होगी। बाबा को ऐसा पैसा नहीं चाहिए, बाबा को ऐसा वाला पैसा चाहिए जिससे पसीना निकले, जिसमें खून समाया हो, जिसमें अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, ऐसा उसको पैसा चाहिए जिसमें मेहनत हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। मिलता कितना है, भाग्य, वो भी एक जुए का ही प्रकार है, वो भी जुआ ही है, लक जिसमें, शेयर, शेयर मार्केट, वो कौन सा आया था बीच में, लक्स इंडिया, ये सब वही कैटेगरी है, जुआ ही है। अच्छा, तो लॉटरी मिलती है तो क्या होता है नेक्स्ट, अब ये बताओ, खुशी होती है, और क्या होता है, नशा चढ़ जाता है, और क्या होता है, चेहरे की रूपरेखा और चलने का चाल ढाल ही बदल जाती है, जैसे पहले चलते थे आप वैसे नहीं चलेंगे। एक व्यक्ति होता है जिसको लॉटरी लग जाती है, तो सारे लोग उसके पास आते हैं, कहते कैसे तुमको लॉटरी लगी, कैसे तुमको लॉटरी लगी, वो कहता है ठीक है आप लोग पूछते हैं तो बता देता हूं, ये तुमने नंबर जो तुमको लॉटरी लगी ना 69, ये कैसे तुमने सिलेक्ट किया लॉटरी का नंबर। वो कहता है ऐसा है, मैंने रात में एक स्वप्न देखा था, स्वप्न में देखा सात नर्तकियां, डांसर्स, सात लाइन में खड़ी थी और नाच रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि बरबर है 7 × 7 = 69, तो वो कहता है कि 7 × 7 = 69, तो इसलिए मैंने 69 नंबर की लॉटरी खरीदी और मेरी लॉटरी लग गई। तो बीच से सभा में से एक हाथ खड़ा करता है, तुमने गलत सोचा, 7 × 7 = 69 नहीं, 49 होता है। वो कहता है लॉटरी तुमको लगी या मुझे? तुम करते बैठो कैलकुलेशन, तुम बन जाओ गणितज्ञ मैथमेटिशियन, तुमको बनना है तो बनना, लॉटरी मुझे लगी है, मैं जो बोल रहा हूं वही, तुमने सपने देखा या मैंने सपने देखा? तो जिसको लॉटरी लगती है उसको अपने उसको अपना ही नशा होता है, उसको चलना पहले कैसे चलता था और अब कैसे चलता है, उसको एकदम नशा चढ़ जाता है, एकदम अत्याधिक खुशी हो जाती है और कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। जैसे एक महिला होती है उसके पति को लॉटरी लग जाती है 1 लाख की लॉटरी, तो उसको डर लगता है कि अगर इसको पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आज तक इन्होंने 1 लाख रुपए देखे नहीं। 1000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख की लॉटरी लग गई तो इसको मैं क्या करूं, अगर बता दूं तो शायद हार्ट अटैक भी आ सकता है खुशी के मारे। तो वो चर्च में जाती है पादरी के पास, ऐसी समस्या है क्या करूं। पादरी कहता है बिल्कुल चिंता मत करो, आई विल मैनेज, मैं इसको मैनेज करता हूं। और वो कहता है मैं उसको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो वो उसका पति घर आता है तो वो पादरी उससे कहता है कि आपको पता है आपको अगर 25,000 की लॉटरी लग जाए, 25,000, तो क्या करोगे? धीरे धीरे बताऊंगा ना, ताकि एकदम 1 लाख बता दिया तो हार्ट अटैक आ सकता है खुशी के मारे। तो वो व्यक्ति कहता है 25,000 की मुझे अगर लॉटरी लग जाए तो मैं आधा पैसा आपको दे दूंगा और चर्च को। तो ये सुनते ही पादरी को हार्ट अटैक और वो नीचे घायल, क्योंकि उसने कभी इतने पैसे किसी ने आज तक डोनेशन में दिए नहीं थे चर्च को। तो लॉटरी अर्थात खुशी, लॉटरी अर्थात नशा, लॉटरी अर्थात एक अपना ही रहता है, मुझे लॉटरी लगी है, तुम करते बैठो गणित हिसाब लगाते बैठो। तो छठवा है लॉटरी और लास्ट है खुशी में नाचना, साथ खुशी में नाचना, जिसको सेवा अर्थात खुशी में नाचते रहना। तो सेवा के ये 7 सूत्र है, पहला मेवा तंदुरुस्ती, दूसरा भाग्य कि हम इस स्थान पर सेवा करते हैं तो महान भाग्यशाली, तीसरा माया आ नहीं सकती, चौथा डबल सिप डबल बिजी, उसके बाद में प्राप्ति डबल प्राप्ति, उसके बाद में लॉटरी और उसके बाद में लास्ट खुशी। अभी मुरली में 5 प्रश्न थे, फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न क्या था? संगम युग की विशेषता क्या है? कौन बताएगा? मेरा बाबा कहने का अधिकार, हक मेरा, सब कुछ हो गया, हद का मेरापन, बेहद का मेरापन, हद का मेरापन नहीं। तो संगम युग की विशेषताएं क्या क्या है, ये होमवर्क है सबके लिए। संगम युग की क्या क्या विशेषताएं बताई भी थी, इसके बाद क्लासेस भी हुई है। तो एक विशेषता बताई कि हरेक को अधिकार है। जैसे श्री राम आते हैं अयोध्या वापस, तो सभी अयोध्या वासियों को है कि राम मुझसे पहले मिले। सभी अयोध्या वासियों को लगता है प्रभु धरी विविध शरीर, भगवान उसमें दिखाया है राम असंख्य शरीर धारण करते, और हर एक अयोध्या वासी को लगता है राम मुझसे पहले मिल रहा है। उसी तरह हर गोपी को लगता है श्री कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहा है, हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण दिखाया हुआ है, और उससे कृष्ण कम नहीं हो रहा है, वो अपनी पूर्णता में स्थित है, उस पूर्णता में से कुछ भी घटता नहीं है, वो ऐसा पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो जो बचेगा वो भी पूर्ण है, ऐसी उसकी महिमा है। तो पहला प्रश्न है संगम युग की विशेषता, दूसरा प्रश्न समीप आत्माओं की निशानी क्या है। समीप आत्मा अर्थात कर्म बोल और कर्म, संकल्प बोल और कर्म समान, तो जितने जितने समान होते जाएंगे उतने उतने क्या होते जाएंगे, समीप होते जाएंगे। दोनों एक इधर है एक इधर है, इसके कर्म इसके कर्म, इसके बोल इसके बोल, इसके संकल्प, ये अगर ऊपर नीचे है तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये ऐसा है। अगर ये समान हो गए तो ये डिस्टेंस अपने आप कम होगा, ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है कि जिसमें संकल्प बोल उसके और हमारे जैसे है वो एक हो गए तो अपने आप स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, कम हो जाएगा डिस्टेंस। तो दूसरा प्रश्न था समीप आत्माओं की निशानी, तीसरा प्रश्न
आत्मा को
नहीं, कौन सी स्मृति सदा रही तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, कौन सी स्मृति, ये संगम युग है, कौन सी युग है, कौन सी स्मृति, ये सोर्स ऑफ इनकम है, कौन सी स्मृति, भगवान आए हीरा जैसा बनाने के लिए, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो संगम युग की स्मृति तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किसके है? क्यों? बाबा से नहीं है, ज्ञान से, योग से, तपस्या से, वैराग से? अगर भगवान आके पूछे बताओ तुम आत्माओं को सबसे ज्यादा प्यार किससे, तो क्या उत्तर देंगे? बाबा हमको सबसे ज्यादा प्यार शरीर से? मुरली में कहा है सबसे ज्यादा प्यार आत्मा को किससे? शरीर से। आत्मा को बचाने, शरीर को बचाने के बहुत प्रबंध करती है। तो अभी यहां एक होमवर्क है, शरीर के लिए बाबा ने आज तक किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? इसमें दो है, शीची है और पुराना है, पतित है। ऐसे 50 शब्द ढूंढना है। हाँ, शरीर के लिए बाबा ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ शरीर है कि जिस तन में तुम्हें भगवान मिले। परंतु ज्यादा निगेटिव है, क्योंकि शरीर को चिपकी हुई है आत्मा और बहुत लगाव है शरीर से, जरा कुछ होता है तो हलचल आ जाती है, हलचल में आ जाते हैं। आत्मा और दूसरों को आत्मा का अमरता का कोर्स कराने वाले भी बीमार हो जाते हैं तो डर आ जाता है। कल हमारे हॉस्पिटल में दो पेशेंट एडमिट हुए, दोनों को सांप ने काटा, स्नेक बाइट के। तो दोनों ने भी सांप को देखा, ये इतना मोटा सांप और ये इतना बड़ा, और ऐसे जबरदस्त काटा। पर जो सिम्टम्स थे उससे लग रहा था दोनों ही नॉन पॉइजनस है सांप। वो ऐसे कहते थे कि बड़ा बड़ा था, पर वो क्या, पेशेंट मैग्निफाई करता है, एंग्जियस हो जाता है, ऐसा डर लगने लगता है। घटना छोटी होती है पर एंग्जाइटी इतनी ज्यादा होती है उसके साथ कि कुछ हो ना जाए, सब ठीक तो रहेगा ना। सांप के निशान दिख रहे ऐसे पैरों पे, दो, एक के हाथ में एक के पैरों में। एक को पांडव भवन के पीछे काटा, वो जो बहन है लेबर कोई, और एक तो सीआरपीएफ का। तो घटना है सांप काटना, पर उसके साथ में भय इतना भयंकर है, बहुत ज्यादा। ब्राह्मणों को रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसा भय? सबको रहेगा। तो मृत्यु भय पकड़े हुए है, उसके लिए शरीर के लिए बाबा ने क्या क्या शब्द कहे? पतित, विकारी, जर्जरीभूत। इसकी लिस्ट निकालनी है आप सबको, ये होमवर्क है सबके लिए, कौन कौन से शब्द कहे। तो सबसे ज्यादा प्यार आत्मा से है, और आत्मा से ये जो प्यार है इसको, शरीर का, शरीर से जो जो प्यार है इसको कैसे कम करे, वो डिटैचमेंट कैसे आए शरीर से, शरीर को जानकर ये शरीर का है, तब पता चलेगा, तब थोड़ी सी आत्मा डिटैच होगी। आत्मा अपने ही शरीर को साक्षी होकर देखे, जलता हुआ देखे, ये उसको चिता में जल रहा है वो शरीर, तब कहीं शरीर से डिटैचमेंट होगा, नहीं तो शरीर से अटैच रहती है आत्मा। लास्ट प्रश्न कौन सा था? प्लान प्रैक्टिकल में कैसे आएगा? ये कहा है कौन सी शक्ति है ये? परिवर्तन शक्ति। सहन शक्ति समझ में आता है, सहन करना, ठीक है। समाना समझ में आता है, समेटना समझ में आता है, निर्णय करना, परखना भी ठीक है समझ में आता है, सहयोग देना। पर ये परिवर्तन शक्ति क्या है? पर क्या परिवर्तन शक्ति है? क्या कैसी शक्ति है ये? बाबा ने ये कैसी बात कह दी? परिवर्तन शक्ति से ये कर दो, हर स्थिति में परिवर्तन शक्ति को प्रयोग करो, यूज करो। नहीं, वो तो है, सब बाबा का है। इसमें खाली एक करना है, बाबा ने परिवर्तन को, एक होता है वर्ब के रूप में प्रयोग करना, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, चेंज करो, परिवर्तन करो, ये तो सुना है, पर परिवर्तन ही एक शक्ति है। जैसे वो महाभारत और रामायण में दिखाते ना, कोई एक बाण का आह्वान करते वो बाण आ जाता है और उसको मारते, वैसे परिवर्तन शक्ति का आह्वान करना, हे परिवर्तन शक्ति आ जाओ, मुझे बदल दो, मेरा ये बदल नहीं रहा है, उस तरह इस तरह प्रयोग करना है कि हे परिवर्तन शक्ति, कोई शक्ति है जैसे एक एक चीज है वो, कि उसका हम आह्वान करें और वो मेरे पास अगर आ गई ना, जैसे ये पारस पत्थर आ गया, हाथ लगा दिया सोना, जहां पर भी टच किया सोना, उसी तरह जिसके पास परिवर्तन शक्ति, एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट उसका अस्तित्व है, जैसे वो मेरे पास आ गई, अर्थात मैं सब कुछ परिवर्तन कर सकता हूं, स्वयं को, दूसरों को, दोनों को। मेरे पास परिवर्तन शक्ति है, इसको हाथ लगा दिया, परिवर्तन लौकिक गायब और अलौकिक प्रकट, हाथ लगा दिया संस्कार परिवर्तन। तो परिवर्तन शक्ति का आह्वान करना, उससे बात करना, है परिवर्तन की शक्ति आ जाओ, अवतरित हो जाओ, मम हृदय कंज निवास कर, मेरे हृदय कुंज में निवास कर, आ जाओ, तो वो आएगी और फिर परिवर्तन होगा। तो इतनी ये पांच प्रश्न है, तो सात सेवा के सूत्र और पांच प्रश्न। ओम शांति।